آسمان مہان جن بچرے ہمارے دھیان میں.
چھترویں گاتھا نکالنا بھیا. یہ گاتھا وہی ہے جو ہم نے پہلا گاتھا شروع کی تھی اور وہاں اس پہ پرچن کرتے آئے ہیں. تو کل رات تک 75ویں گاتھا پوری ہوئی اور 76ویں گاتھا چل رہی تھی کل رات کو بھی, اور اسی کے آگے کا یہ پرکرن ہے. میں نے کوئی نیا وشے نہیں چنا گیا آپ کے لیے. ابھی کے لیے جو ہمارے یہاں چلتا ہے وہ ہے. ابھی اس کی تھوڑی بھومکا کے لیے, کیونکہ جو لوگ آج ہی ابھی آئے ہیں انہیں پتا نہیں ہے کہ پیچھے کیا نکلیں گے. انہوں نے کہا یہ پروتن سار میں سننا کہ سب سے پہلے سدوپ یوگ ہی دھرم ہے. کسی نے سنا نہیں تھا تو انہوں نے 10-12 گاتھاؤں میں سدوپ یوگ کا سروپ سمجھایا کہ ہمارے تو ماتھے پہ سے نکل گیا. اب آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس سدوپ یوگ سے ہمیں ملے گا کیا, پہلے ہم یہ نکی کریں گے. بنیا بنا یہ نرنے کرے بنا کہ اس کا لابھ کیا ہے, ہم اس میں زیادہ الجھیں گے نہیں. تم یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ سدوپ یوگ دھرم ہم اپنا لیں گے تو ہمیں ملے گا کیا پاٹنی جی. تو انہوں نے کہا تمہیں انت اتیندری گیان اور انت اتیندری سکھ ملے گا. تو ان نے بھی دوسرے ادھیکار رکھا گیاناکار اور تیسرا ادھیکار رکھا سکھاکار. اور ان نے اتیندری گیان مانے کیول گیان کا سوروپ سمجھایا. بہت مارمک پرکرن ہے, بہت مارمک. میں سب سے بڑھیا مانتا ہوں سمے سار میں بھی ایسا کوئی پرکرن زیادہ نہیں ہے کہ بھگوان کیول گیان کا کہتے کسے ہیں, ان کو ہوا کیا تھا. جیسے پنڈت کلیانک میں ہوتا نا کیول گیان کلیانک, تو میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں بھیا آج کیا ہوا تھا, آج کیا کیول گیان کلیانک. لیکن ہوا کیا تھا کہ وہ کیول گیان ہوا تھا. وہ کیول گیان ہوا تھا یہ تو سب ٹھیک ہے, لیکن بھگوان کو ہوا کیا تھا, ایسا سمجھتے کیا ہوا تھا, بچہ ہوا تھا کہ بچی. ہم نہیں سمجھتے کیول گیان لڑکے کا نام ہے کہ لڑکی کا نام ہے, کیا ہوا تھا ہمیں تو تم یہ بتاؤ. تو کیول گیان کا سروپ کیا ہے واستو میں, وہ ان نے بتایا. اب پھر کہا کہ ایک گیان کا بھی لے کے ہم کیا کریں گے, کہ اس کے ساتھ اتیندری سکھ بھی ملتا ہے. وہ بہت بڑھیا چیز ہے. کیا ون بائے ون گیٹ فری, کیول گیان لو تو انت اتیندری آنند تمہیں مفت میں ملے گا. ایک چیز خریدو تو ایک چیز اس کے ساتھ میں فری میں ملتی ہے نا. تو ان نے کہا وہ تمہارے اتیندری سکھ کیا ہے, تو انہوں نے پھر یہ بتایا. پھر سب سن کر کے کوئی سوتا بولے کہ بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے بتائی, ہم آپ کو بہت دھنیواد دیتے ہیں, لیکن ہم کو یہ دوسرا سکھ اور ہوتا ہے دنیا میں جسے کہتے ہیں نا اندری سکھ, تو اس کا بھی تو بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے. تم سکھادھیکار ایسے ہی ختم کر دو گے؟ ارے جب سکھ دو پرکار کا ہوتا ہے تو وہ بھی بتاؤ. تم اچھا بتاتے ہیں کہ دنیا میں سکھی کون ہے سب سے زیادہ, کہ منسوں میں چکرورتی, دیووں میں اندر, اسریندروں میں اسریندر, تین میں وہ سب سے زیادہ سکھی مانے جاتے ہیں. کہ ہاں عذاب تو ہے ہی, ہم یہی کہتے ہیں, ہم تو کروڑوں لاکھوں روپیہ دے دے کے اندر بنتے ہیں, 5 دن کو ساگنوں کے لیے اندر بننے کو ملے تو اس سے بڑھیا اور کیا ہوگا. ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں موکش میں جانے کے لیے نہیں. تو کہ تم پہلے اس اندروں کے اور چکرورتیوں کے سکھ کی بات سمجھ لو. تو ان نے یہ بتایا اس میں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی یدی کوئی ہو تو وہ چکرورتی اندر ناگیندر ہے. کیوں کہ ان کو 5 اندریوں کا وشے اتنا ادھک ہے, हमारी एक दो पत्नियों से काम चल जाता है, वहां 96,000 चाहिए। हम एक गाड़ी घोड़े से काम चला लेते हैं, वहां 18 करोड़ घोड़े चाहिए, 84 लाख हाथी चाहिए, है? इतनी भोग सामग्री चाहिए, 96,000 पत्नियां चाहिए, और निरंतराय भोग चाहिए। पट रानी मासिक धर्म से नहीं होती, क्योंकि मासिक धर्म से होगी तो अंतराय आ जाएगा भोग में, उनको निरंतराय भोग निरंतर चाहिए। जब भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय पढ़ी कि नहीं पढ़ी तुमने, उसमें लिखा है कि जब 60,000 वर्ष को दिग्विजय करने गए थे तो पूरा रनवास साथ में था, और जो उनके 60,000 बेटे थे उसमें आधे से ज्यादा वहीं बीच में वहीं हुए थे। इतना इतना अधिक, इतना सुख, इतना सुख, हमारे तो मुंह में पानी आ जाता कि वो कह रहे कि वो इतने दुखी थे कि उनके दुख को दूर करने के लिए दवाई के रूप में इतनी भोग सामग्री थी, और दिन में 3-3 गोलियां खाते थे, सुबह शाम से खुराक लेते थे, और फिर भी उनका दुख नहीं मिटता था, क्योंकि दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। यदि वे दुखी नहीं होते, सुनो, तो ये 5 इंद्रियों के विषयों में व्यापार नहीं करते। यदि वे स्पर्श इंद्रिय के दुख से दुखी नहीं होते तो 96,000 शादियां नहीं करते। क्यों? ऐसी अब सब बात समझ लो। तो उनने कई गाथाएं हैं बहुत बहुत मरम की कि जिसमें ये सिद्ध किया है। आप चाहो तो यहां तक के मेरे सब कैसे तैयार हैं, वीडियो ऑडियो आप ले जा सकते हो, और घर पर शांति से उन्हें सुनो कि चक्रवर्ती कैसा सुखी है, इंद्र नागेंद्र कितने सुखी हैं। अब वो तो सर यहां तो निकल गया, अब वो कहते हैं वो इतने दुखी हैं, तो उनने कहा पुण्य के उदय वाले भी दुखी और पाप के उदय वाले भी दुखी है, ये तो हमारी समझ में नहीं आई। क्यों? जिनको पुण्य का उदय हो उन्हें तो सुखी होना चाहिए, और जिनके पाप का उदय है वे दुखी हो। क्यों? ये ठीक है कि नहीं? अभी तक तो हमने यही समझा है, लेकिन वे कह रहे पाप के उदय वाले तो दुखी हैं, पुण्य के उदय वाले भी दुखी हैं, कि थोड़ा कम ज्यादा दुख तो होगा। तो जो कल शाम को व्याख्यान हुआ अब उस पर आ गया हूं मैं, बताते बताते आपको, उसमें ये कहा गया है कि दोनों को बराबर दुख है। चक्रवर्ती को 5 इंद्रियों के भोग भोगते हुए भी सुरक के देवताओं को, कौन सा, तन वेदना से दुखी वे, तन वेदना से दुखी हैं, इसलिए वो गंभीर विषयों में रमे हैं ना। देखो देवों को तन वेदना, कि कैंसर हुआ वो है, कि हार्ट अटैक हुआ, क्या था, कि सर्दी जुकाम हुआ, क्या हुआ, वो जन्म से ही जवान पैदा होते हैं, मरते समय तक बुढ़े नहीं होते, लाखों वर्ष तक जिंदा रहते सागरों पर्यंत, समझना है ना। और उनको एक भी बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ शरीर, सुंदर स्वस्थ। ये विंदर विंदर देव है ना, ये भी बहुत स्वस्थ सुंदर होते हैं, ऐसा नहीं समझ लेना ये दुनिया भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं है। भोगों की दृष्टि से कोई कमी नहीं है उन्हें, ये तो कौतूहल करते हैं तुमसे जाके मजाक, जैसे राजा है ना भंगी को पाठ करे किसी नाटक में, भीख मांग दे, ये ऐसा है, उन्हें कोई कमी नहीं है। तो फिर वे भी इतने भोग सामग्री वाले और इतना निरंतर भोग करने वाले, और ये गरीब से गरीब जिनको खाने को नहीं मिलता है, हैं? ऐसे लोग, और आप 96,000 पत्नियों के पति और एक काली कलूटी, 1,000 बीमारियों की घर ऐसी पत्नी, वो सब दोनों को एक साथ, क्या उनने क्या दिया आचार्य ने तर्क, देखो सुना, ऐसी बात है कि तुमको इसकी स्वाध्याय करने की इच्छा हो जाएगी। वो कहते हैं कि जब कोई आदमी को कोई तकलीफ होती, जिसे आप सुख कहते हो ना, पांच इंद्रियों की भोग सामग्री, ये सुख सामग्री है और हम उनको भोगते हैं, तो हमें जिनके पास मौजूद है तो सुख मौजूद है, हम जब चाहें भोगें, जितना चाहें भोगें, हमें कोई रोक टोक नहीं है। तो कहते वो सामग्री हमारे पास मौजूद है पुण्य के उदय से, और पाप के उदय से ऐसा नहीं है कि सामग्री नहीं मिलती है, आप धोखे में हो। पाप के उदय से भी सामग्री मिलती है, पर बढ़िया नहीं मिलती, स्वादिष्ट बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा, समझे, सुंदर पत्नी नहीं मिलेगी, 10-20 नहीं मिलेंगी, आप समझ गए ना, नहीं मिलेगी वाली बात नहीं है, पुण्य पाप दोनों से मिलते ही हैं। नहीं मिलना कैसे होता, पुण्य खलास हो जाए तो नहीं मिलेगी, पुण्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगी, पाप नहीं होगा तो वो नहीं मिलेगी। नहीं मिलने का सवाल तो पुण्य पाप के नहीं होने से है, होने में तो मिलती ही मिलती है, समझे ना। अब दोनों के पांच इंद्री के विषय मौजूद हैं और दोनों को पांच इंद्री के विषय भोगने की तीव्र अभिलाषा है, स्वर्ग में तो होगी ही, और अपन भी नहीं, पाचन शक्ति खराब हो जाती, भूख नहीं लगती है, चूर्ण खा खा के ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, कि चूर्ण वादी के लड्डू खाना है। तो कहते दोनों जो के पांच इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी तरफ गृद्धता से ऐसे दौड़ते हैं जितनी ताकत है उससे ज्यादा रफ्तार में पांच इंद्रियों के विषय की तरफ भोगने को दौड़ते हैं। समझ लो कि 10 बजे हम रोजाना खाना खाते हैं, गरीब आदमी भी खाता है और सम्राट भी खाता है। अब भूख अच्छी 10 बजे भूख लग जाई जम के, और आवाज इस कार्यक्रम में फंस गए, प्रवचन सुनना पड़ेगा, तो वो भी 12 बजे के पहले ठिकाना नहीं लगेगा, अभी 2 घंटे क्या है, क्या करें। तो 2 घंटे जो भूख लगेगी तो यहां के जो अरबपति बैठे हैं उनको भी वैसी तकलीफ होगी ना, और जो गरीब बैठा है उसको भी वैसी तकलीफ, वो तकलीफ में क्या फर्क है बताओ, वो भूख की तकलीफ, समझ गए ना। अब दोनों के लिए सब उसके लिए बहुत बढ़िया भोग सामग्री, मैंने कहा खाना मौजूद है बढ़िया से बढ़िया, और उस गरीब के लिए रूखी सूखी रोटी है ना, वो दोनों मौजूद है। नहीं है वाली बात मत करना यहां। अब वो जब छुट्टी हुई तो ऐसे भागते हैं भोजनालय की तरफ, अपने अपने वो भी भागते हैं, करोड़पति भी और वो गरीब भी भागते हैं। तो कहते हैं वे दोनों अपने विषयों की तरफ एक सी गृद्धता से भागते हैं। तो वो गृद्धता दुख है क्या सुख, अंदर में जो फीलिंग हो रही है कि 2 घंटा काटना मुश्किल हो गया था, वो सुख है क्या दुख, बोलो। अब वो दोनों फीलिंग एक सा करते हैं, इसलिए पाप के उदय वाले भी दुखी और पुण्य के उदय वाले भी दुखी, और दोनों का दुख भी एक सा आया ख्याल में। ये सब बातें इसमें लिखी हैं, ये मेरी तरफ से नहीं है इसमें कुछ भी, पर मेरा नमक मिर्च मेरा है बस। जैसे जितना बाजार से सामान आता है, आटा दाल सब्जी मब्जी मिर्च मसाले, ये तो सब एक ही जगह से सबके आते हैं, और एक रसोईया बढ़िया होता है क्यों, तो उसे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना देता है, और ये कहला पेट भराऊ काम चला देता है, होता क्या नहीं होता है। तो ऐसे पुण्य पाप के उदय के अनुसार सामग्रियां तो सबको मिलती हैं। अब वो तो बनने का चक्कर है, और भूख भी एक सी लग रही है। तो वो कहते हैं, वो बोलो छंद बोलो भाई कौन सा, हाँ।
सपुरं बादा सहिदं
नहीं, नहीं। हाँ वो बोलो 63वां बोलो नरे
कविषयों में रमे
तो اب تم 71 بولو 71 ماں
سب سے ہے سدھ دے بھونکے نہیں ہے صبح بھی سکھ تن بے دنا سے دکھی بے رمڑی کبھی سے
کیا کہہ رہے سنو یہ بات سدھ ہے کہ دیووں کے سکھ نہیں ہے اور بے کیسے دکھی ہیں دیو کہ تن ویدنا سے دکھی ہیں یہی کہہ اب انہیں دکھ بتا رہے تو تن ویدنا کا بتا رہے یہ تو بات نکی ہو گئی کہ دیو گتی میں بھی سکھ نہیں ہے دکھ ہی ہے کیونکہ ہم نے شاستروں میں چاروں گتیوں کے دکھ پڑے ہیں اور ہم نے خود بھگوان سے کہا ہے کہ آدیشور بھنگراج ہو میری دین تنی سن بینتی چاروں گتی کے مائیں میں دکھ پایو سو سنو چھڑالا میں تو چار گتیوں کے دکھوں کا ورنن ہے ہی تو کہتے بھگوان کی بانی سے یہ سدھ ہے اپدیش سے ہے سدھ مانے دیو دھنی سے یہ بات سدھ ہو گئی کہ دیوتاؤں کے بھی اصلی سکھ سواب سکھ نہیں ہے اور وہ کیا کے دکھی ہیں کہ تن ویدنا سے ارے انہیں کہاں تن ویدنا ہوگی ایک بیماری نہیں ہوتی ہم جو تن ویدنا اس کو بولتے ہیں جب کینسر وینسر ہوئے وہ ہوتا ہی نہیں کہ تن ویدنا ایسا ہے کہ سارا شریر ایک دم سوستھ ہے مضبوط ہے پتھر کو پچا جائے ایسی طاقت ہے اور سامنے بڑھیا سے بڑھیا بھوجن بھی ہے لیکن اس سبھیتا نے مار کھایا کہ دو گھنٹہ رکو جب وہ مہمان میزبان والے کہیں کہ پدھارو مہمان سے تبھی تو جا کے کھا سکتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر کے جا کے سوچ میں گھوشنا کرتے ہیں کہ ابھی جلدی نہیں ہے دو گھنٹہ بھوجن میں دے دیے شانتی سے بیٹھے رہو چپ چاپ کیا ہوتا ہے بولیے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھوک کی پیڑا ہے وہ تن ویدنا ہے کہ بولو وہ تو اصلی ویدنا ہے شریر بھوکا ہے تو عمر صاحب نے لگایا نا بے دس سے ادیرن آئے ایک جگہ تن کیا لگا کوٹھائے کیوں اوم کوٹھائے کہ یہ بھوک لگتی ہے چار کارنوں سے لگتی ہے بولو بولو تم آ گئے نا بولنے والے بولو آہار دنسن یا تسو جوگین اوم کوٹھائے بے دس ادیرن آئے میں تو بھیا 65 ورس پہلے پڑا تھا وہ یاد ہے جتنا ہے سو ہے کہ چار کارنوں سے بھوک لگتی ہے ایک تو آہار دنسن دینے ابھی ہم شانتی سے بیٹھے ہیں اور بڑھیا سامنے بھوجن دکھے تو ایک دم بھوک لگ جاتی ہے بولا تھا نا سامنے کہ ہم نے وشیشنا پیدا کریں یہ چھند ہے نا کون سا اپن کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے کے دن میں تھے زمانے میں کہ گھر سے مہیلائیں اندر رسوئی سے پوری تھالی لگا کے آتی تھی اور پروس دیتی تھی کیوں اشوک جی اور آپ چپ چاپ کھا لیتے تھے بولتے نہیں تھے اب کہتے نہیں نہیں یہ نہیں چلے گا بفے کیا ہوتا ہے مانے ہم تمہارا پروسا نہیں کھائیں گے اب تو ہم اپنے ہاتھ سے اٹھائیں گے ہمیں بھی یاد آ دیتی ہے تم تو آرام سے خود کو پریش کو اپنے من کا کھاتی نہیں اور ہمیں تم نے تمہارے من کا کھلایا اب ہمیں بھی تو اپنے من کا کھانے دو کہ ٹھیک ہے آپ آ جاؤ لے لو ایسے نہیں تم سارا بھوجن میرے سامنے لاؤ ٹیبل پہ رکھو وہ ڈائننگ ٹیبل ہوگی اس میں کانچ کی برنیوں میں سارا مال ایک ایک میں ایسا ایسا رکھو ہم دیکھیں گے اور جو ہمیں جچے گا اس میں سے نکال کے وہ کھائیں گے ساری بھوگ سامگری ہمارے سامنے اپلبدھ رہنی چاہیے یہ تو اکیلا کھانے کا میں ادھارن دے رہا ہوں کہ پانچ اندریوں کے وشے کی بھوگ سامگری ہمیں بالکل سامنے اپلبدھ چاہیے ایسا ہاتھ نہیں کرنا پڑے پنکھا چلانا ہے تو یہاں بٹن چاہیے کہ دبا کے ہم چلا دیں اے سی چلانا ہے تو بند کرنا ہے ایسا کرنا پڑا یہ ہمیں برداشت نہیں ہے تو اس میں اس گاتھا میں کیا لکھا کہ کیا ہوگا اس سے مہیندر کمار جی ایسی تم سب ویوستھا جمع لو گے تو اس سے ہوگا کیا कि वो जो सामग्री रखी है भोजन की वो विशेषणा पैदा करे, वो तुम्हें खाने की तीव्र इच्छा पैदा करेगी। और डॉक्टर मना करता है तो खा पाओगे नहीं, रोओगे। बोलो बोलो गाथा बोलो।
शुभ भाव से उत्पन्न विद विद पुण्य यदि विद्यमान है तो वे सभी सुर लोक में विषेशणा पैदा करे।
प्राकृत गाथा का अक्षर अक्षर हिंदी अनुवाद है। तो क्या कह रहे, तुम्हारे पुण्य के उदय से, जो पुण्य पुण्य के तुम इतने गीत गाते हो, तुम्हारे इस पुण्य के उदय से तुम्हें सब चीजें भोग सामग्री मौजूद है और बिल्कुल सामने उपस्थित है, लेकिन उससे होगा क्या? क्यों कि उससे होगा ये कि तुम्हें खाने की तीव्र इच्छा होगी, पांच इंद्रिय के भोग भोगने की तीव्र इच्छा होगी। सब चीजें उपस्थित हैं, किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है, बाप माँ बाप को भी देखना नहीं है, हाथ में हाथ मिला के चल जाएंगे माँ बाप के ही सामने, गले में, अब तो गले में हाथ डाल के भी चल जाए तो कोई क्या आश्चर्य नहीं है। अरे गले में हाथ डाल के चलने के दिन तो हमारे आए हैं, तुम्हारे थोड़ी। तुम हंसते हो, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं, जाना नहीं था ये, लेकिन हम दोनों भाइयों का ऑपरेशन हुआ था ना, और फिर हम अस्पताल में 10-12 दिन 15 दिन रहे थे, तो बड़े ज्यादा जरा जल्दी ठीक हो गए थे और मैं जरा देर में ठीक हुआ था। तो उनको कभी कहते घुमाओ घुमाओ, नहीं घुमाओ, तो मैं तो पहली दफे घूमने के लिए बाहर निकला तो बड़े दादा का बड़ी भाई के गले में हाथ डाल, क्यों सच्ची बात है कि झूठी? दादा कहा ये दिन देखने को मिलता ही नहीं, भाई जाते ना तो गले में हाथ डालने का मौका तो हमें आया, तुम कहा तो अभी से लेने लगते हो। अरे जब हाथ पैर नहीं चलेंगे, नहीं उठेंगे, तो हर तरह का सहयोग एक दूसरे को लेना पड़ेगा ना, इतने नजदीक और कौन रहेगा? बोलो महेंद्र कुमार जी, है कि नहीं है? कौन करेगा इतना सेवा? एक दूसरे की हमें करना पड़ेगी ना, करना चाहिए ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए विशेषणा पैदा करें, वो कोई अच्छी चीज नहीं है पुण्य के उदय से। फिर मैंने ये भी बताया था कि पुण्य के उदय से तुमको 10 मोटर गाड़ियां और बढ़िया बढ़िया, कौन कौन नाम, मैं नाम जानता नहीं हूं, क्या मर्सरीज क्या होता है, ऐसी होती है ना, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां वो अपन ने रख ली 10 गाड़ियां, तो 10 ही में बैठोगे? 9 तो रखी रहेंगी ना, उनका टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या मैं तो उपयोग नहीं करी, क्यों जाके 10 होटल के कमरे बुक कर दो, तो 1 में रुको और 9 में ताले ही लगे रहने दो, तो किराया 1 का दोगे कि 10 का? मैं तो 1 ही में रोका साहब, मैं 10 में तो रुका ही नहीं, नहीं चलेगा, तो किराया 10 का देना पड़ेगा। तुम्हारा पुण्य खर्च हो रहा है पूरे का, भोग में आ रहा है कितने कम है? अगर पुण्य ही खर्च नहीं हो रहा कमल जी, वो सब पुण्य के उदय से मिली ना, इसलिए पुण्य खर्च हो रहा। और वो है क्या? ये 10 गाड़ियां हैं क्या? ये 10 बंगले हैं क्या? अपनी शास्त्रीय भाषा में इसका क्या नाम है? बढ़िया नाम, परिग्रह। देखो हमारे बच्चा, इन सबका एक नाम है परिग्रह, है ना, एक नाम परिग्रह। तो ये परिग्रह माने होता है पाप, तो ये पाप मिला है, वो तो होगा ही नहीं, वो भी चालू है, क्या करो। तो अब बोलो कि जितनी हमको चाहिए भोग सामग्री, उतना ही मिलने का पुण्य चाहिए कि उससे 100 गुना चाहिए? इस तर्क से तो ये बात सिद्ध होती है कि उतना ही मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, क्यों मुफ्त में पाप काय को कमाएं, सबकी समझ में। लेकिन लक्षण तो ऐसे दिखते नहीं है, वे उतना मिला है उसे भोगने की फुर्सत नहीं है और 100 गुना कमाने में दिन रात लग रहा है। क्या पोजीशन है? क्या होगा? क्या करोगे इस परिग्रह का? क्या होगा? शास्त्र क्या कहते हैं, समय सार नहीं, हम समय सार की नहीं सुनते। हमें तो ऐसा शास्त्र बताओ जिसमें एक आदमी भी नहीं कहे कि ये शास्त्र नहीं चलेगा। है कोई? बताओ, नाम बताओ इस शास्त्र का। तत्वा सूत्र है ना, सारों समाज दिगंबर से तांबा थानक वासी सब तत्वा सूत्र को प्रमाणिक मानते कि नहीं। उसमें लिखा है बहुवार अम्भ परिग्रह से नारक आयुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक आयु के बंध का कारण है। बोलो कौन ध्यान देता है इस पे? ये समय सार में थोड़ी लिखा है और ये पंडित हुकुमचंद थोड़ी बता रहा है। क्यों, क्या करोगे? तो इसलिए कहते हैं कि तुम पुण्य की दशा तो देख लो, ये पांच इंद्रियों के विषय तुम ये सारी बातें बताने के बाद फिर छत्तरवीं गाथा आई। अब पढ़ो छत्तरवीं गाथा।
सपरम्बदा सैदम विच्छिन्नं बन्धकारणं विषमं जम इन्द्रिये लब्धं तं सुखं दुःखमेव ता इन्द्रिये सुख सुखनै दुःख है विषमबाधा सहित है बंद का कारण दुखद परतंत्र है बेचिन्न है।
अब रुक जाओ, मैं शांति से पढ़ता हूँ तो तुम अपनी किताब में देखो। मैं 73, 74, 75 और 76 चार गाथाएं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, सबकी समझ में आएगा, ध्यान से सुनेंगे तो। वज्र धर अर चक्र धर सब पुण्य फल को भोगते। वज्रधर माने इंद्र और चक्रधर माने चक्रवर्ती, ये सभी पुण्य के फल को भोगते हैं, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है ना, ठीक है। और देहादि की वृद्धि करें, देह बढ़ती है, मोटे ताजे होते जाते हैं और क्या होता है, पर सुखी हों ऐसे लगें कि सुखी मानस दिखता है, अच्छा है ना, दुबला पतला नहीं है ना, कि सुखी हों ऐसे लगें, लगते ऐसे हैं जैसे सुखी हों, पुण्य के उदय वाले ऐसे लगते हैं बाहर से जैसे सुखी हों। ये बीमार भी होंगे ना, 50 बीमारियां को लेके होंगी, फिर जब इधर आएंगे स्टेज पे तो एकदम ढक जगा कर नहा धोकर के, चाहे दो नौकर नहाए, एकदम अप टू डेट करके कपड़े पहन के जैसे आएंगे। हमें तो बीमार लगते हैं, कैसे लगे, लगने देंगे तो जब लगे, बेचारा गरीब होगा तो बेचारा वो कितना ही स्वस्थ हो तो ऐसा ही बैठा होगा, मैं मुरझाया जैसा, क्या करें। क्या लिखा? सुखी हों ऐसे लगें और शुभ भाव से उत्पन्न विद पुण्य यदि विद्यमान है। तुम कहते नहीं, पुण्य का उदय विद्यमान है तो सुख तो मिलेगा ही ना, तो वो कहते हाँ, यदि शुभ भाव तुमने कमाया है उससे उत्पन्न यदि पुण्य विद्यमान है जगत में तो वे करते क्या है, तो वे सभी सुरलोक में विशेषणा पैदा करेंगे, बस विशेषणा पैदा करेंगे, भोगों पांच इंद्रिय के भोग भोगने की इच्छा को ज्यादा करेंगे। और अरे जिनकी उदित तृष्णा हो जान दो, तो तृष्णा उदित हो गई ना, फिर तो दुख से संतप्त वे, जिनके उस कृष्णा उदित है वे दुख से बहुत दुखी हैं, से संतप्त वे हैं दुखी, फिर भी आमरण वे विषय सुख ही चाहते। गजब तो ये है कि उससे इतने दुखी हैं तो भी मरते दम तक वे विषय भोग ही चाहते हैं। इसका जोंक का उदाहरण दिया कि वो जोंक एक तो गंदे खून को पीती है, अच्छे खून को पीती नहीं है, और जब चेंट जाती है तो उसे हटा नहीं सकते, उसे हटाएं तो वो खुद मर जाए, लेकिन वो निकलेगी छूटेगी नहीं, वो नहीं हटाओ तो जब पेट भर जाएगा तो फिर छूट छोड़ देगी ना, अरे पेट भर जाएगा तो पीती रहेगी, पीती रहेगी और उसका पेट फट जाएगा, ऐसा होता है तो भी पीती रहेगी। उस जोंक का उदाहरण आचार्य ने देखा, बैठे होंगे तालाब के किनारे ध्यान कर रहे होंगे, पहले लोग क्या करते थे, बीमारी होती थी ना गंदी तो जोंक को चटा देते थे, गंदा खून वो पी जाए तो हमारी बीमारी ठीक हो जाए, कुछ साधन माधन होती थी ना। तो वे लगते हैं कि ये जोंक ऐसे सब ये पांच इंद्री के विषय भोगने वाले उस जिसको सुख कहते हैं ना बड़े बड़े, वे सब आमरण तक वो मर तक जाए इस कीमत तक उसको नहीं छोड़ना चाहते। हिरण में और बिल्ली में अंतर जानते हो? हिरण घास खा रहा हो जंगल में और इतना करो तो एकदम शोक छलांग मार के भाग जाएगा, छोड़ देगा उसे, भोजन को छोड़ने में इतनी देर नहीं लगती उसे। और बिल्ली ने चूहे को पकड़ रखा हो तो चार डंडा मारो तब तक तो उसे सोचने में नहीं आता क्या हो रहा है, वो भगेगी तो चूहे को लेके भगेगी, चाहे मर जाए मरने की कीमत पर भी नहीं छोड़ेगी। ऐसी है वृत्ति, तो वो अनंत दुखी हैं। ये पुण्य के उदय वाले कितने दुखी हैं, है कोई उदाहरण? क्या जितने पाप के उदय वाले हैं। अब ये बात नक्की हो गई बहन भैया, तो अब वे कहते हैं कि जब पुण्य और पाप के उदय वाले दोनों ही दुखी हैं तो पुण्य और पाप का भेद करने से फायदा क्या है, फिर तो दोनों को एक ही मान लो ना। अच्छा मान लिया, बनवा लिया तुमने, तो फिर भैया वो पुण्य बनता है शुभ भाव से, वो पाप बनता है शुभ भाव से, तो फिर शुभ अशुभ का भेद काहे को करते हो, तो उसे भी ये कहीं मान लो कि दोनों अशुद्ध भाव हैं, मानना पड़ेगा। ये गाथाएं आने वाली हैं कि फिर पुण्य पाप अलग अलग कैसे, फिर शुभ अशुभ भाव अलग अलग कैसे, ये सब दोनों एक ही हैं। और अंत में तो प्रश्न पत्र देने वाले हैं, परीक्षा हो जाएगी शिविर में जाने के पहले, क्या क्या है अब पढ़ो 77वीं गाथा।
पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न माने बात, ये संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आसन्न बे।
और हमने इतना समझाया कि पुण्य पाप एक ही है, पुण्य पाप एक ही है, और फिर भी जो नहीं मानेगा पुण्य पाप में अंतर नहीं है ये न माने बात, जो ये बात वो नहीं स्वीकार करेगा तो उसके फल में उसे अनंत काल तक संसार समुद्र में घूमना पड़ेगा। ये कैसी गाथा है देखो तो, यानी मैं आपको इसलिए पढ़वा रहा हूं कि आपको मालूम पड़े कि इसमें मेरा नमक मिर्च कुछ नहीं है, इनको तो इनको ही ढंग से पढ़ दो तो ही बहुत बढ़िया प्रवचन हो जाता है। यार अच्छा प्रवचन करने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उदाहरण लाला करके सुनाओगे तो समझेंगे पंडित जी अपनी तरफ से गप ठोक रहे, इसमें इतना भरोसा तो होता है कि मूल शास्त्र की बात है। मैंने बोला ना कि मैं अपने गांव में पढ़ता था ना मुरैना विद्यालय में, तो अपने गांव में आता था तो सब भी बढ़िया प्रवचन करता था, तो अपने गांव में आता था तो प्रवचन करता था, प्रवचन करता था तो शास्त्र खोलता ही नहीं था, एक घंटा बोलता रहता था। तो मेरी माँ सुनने आती थी तो घर आगे पहुंची थी, बेटा तुमने जी जो बातें कही हैं ये सब शास्त्र में लिखी हैं? तो मैंने कहा हाँ ये लिखी है शास्त्र में, लिखी शास्त्र में ऐसी बातें लिखी हो, सच सच बोलते। मैंने कहा हाँ हाँ, तो तुम पढ़त तो हो ही नहीं है, देखत तो है ही नहीं है, तो मैंने तुमने हमें भेजा काय को है उधर, पढ़ ही पढ़ के तो आए हैं और यहां भी पढ़े, हम दिन भर पढ़ते हैं फिर हमको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, जो तुम्हें बताने के लिए पढ़वा रहे, नक्की तो हम कर रहे हैं कौन गाथा निकालो और पढ़ के सुनाओ, वो हमें मालूम है ना उसका कच्चा चिट्ठा, वो गाथा में क्या लिखा है ये हमें मालूम है ना, तो ऐसे ही थोड़ी मालूम है, हमने 24 घंटा उसमें रमते हैं तब हम आपको ये इस तरह से बता सकते हैं कोई बात। तो ये प्रवचन सार का प्रकरण अपना चल रहा है और इसमें ही वो 80वीं गाथा भी आएगी जो बहुत प्रसिद्ध है, 82वीं गाथा भी आएगी जो बहुत प्रसिद्ध है, वो पहुंच गए तो 86वीं गाथा भी आएगी, क्या 86वीं बोल दो चलो। ऐसे बोला जाता है मरे मरे
तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष आज न शास्त्र से द्रग मोह से ओ इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए
ना। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष जाने वो शास्त्र से पढ़ के जाने उनका दर्शन मोह मिथ्यात्व कर्म का क्षय होता है माने सम्मा दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए स्वाध्याय करना चाहिए। यहां पहुंचे अब कौन से निष्कर्ष हमने खराब निकाला क्या कहां से चला रहे कहां पहुंचा रहे क्या हो रहा क्या पढ़ना है आपको 10 दिन हम क्या पढ़ाएंगे पूरा कोर्स हमने आपको पहले ही दिन बता दिया। कोरा उद्घाटन के हो जाता तो मजा आ जाता ऐसा मजा आता है। इसलिए हमने कहा भी ये ज्यादा उद्घाटन जल्दी जल्दी सस्ते में निपटा लिया करें है ना। और ये हमने ऐसे ही कर आगे ऐसे ही करेंगे वो अगस्त के शिविर में हम नहीं कर पाते कभी कभी क्योंकि उसमें हमारी नहीं चलती है जहां हमारी चलेगी वहां तो ऐसा ही होगा।